एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। हमारे सभी सुनने वालों का आज की इस खास चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है।
नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में उतर रहे हैं जिसने सही में दुनिया भर में लाखों लोगों की सोच बदली है। मैं बात कर रहा हूँ मिहाई चिक्सेटमिहारी की मशहूर किताब फ्लो, द साइकोलॉजी ऑफ ऑप्टिमल एक्सपीरियंस की।
बिल्कुल। और ये विषय मतलब ऑप्टिमल एक्सपीरियंस, या जिसे हम कह सकते हैं सर्वश्रेष्ठ अनुभव, आज के समय में तो शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गया है।
हाँ बिल्कुल।
हम सब भागदौड़ भरी जिंदगी में खुशी ढूंढ रहे हैं ना, और अक्सर बाहरी चीजों में देखते हैं, पैसा, शोहरत, आराम
जी।
पर क्या ये चीजें वाकई हमें वो गहरी वाली संतुष्टि दे पाती हैं जिसकी हमें तलाश है? शायद नहीं। और ये किताब इसी बड़े सवाल को न विज्ञान और मनोविज्ञान और मतलब दशकों के शोध के आईने में देखती है।
हाँ, और ये हमें फ्लो यानी प्रवाह की उस अद्भुत मानसिक अवस्था से मिलवाती है, वो अवस्था जब हम किसी काम में इतने मग्न, इतने डूब जाते हैं कि हमें समय का पता नहीं चलता।
हाँ, और कभी कभी तो खुद का भी होश नहीं रहता।
बिल्कुल। तो हम जानेंगे कि ये अवस्था आखिर है क्या, इसे कैसे पाया जा सकता है, और ये हमारे जीवन को कैसे ज्यादा सार्थक बना सकती है।
लेकिन इस दिलचस्प कॉन्सेप्ट में और गहरे जाने से पहले मुझे लगता है उस शख्स के बारे में जानना भी जरूरी है जिसने हमें ये नजरिया दिया, मिहाई चिक्सेंटमिहाई।
सही बात है। वो एक हंगेरियन अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। जन्म 1934 में हुआ और 2021 में उनका निधन हुआ, और उन्हें पॉजिटिव साइकोलॉजी यानी सकारात्मक मनोविज्ञान के जो संस्थापक हैं उनमें गिना जाता है।
और उनका अपना जीवन भी जैसा आपने कहा कम असाधारण नहीं था।
उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध की विभीषिका देखी, नाजी कैंप से बच निकले
जी। तो शायद इन्हीं दर्दनाक अनुभवों ने ही उन्हें सोचने पर मजबूर किया होगा कि भाई इतनी मुश्किल और भयानक परिस्थितियों में भी कुछ लोग कैसे कैसे जीने का मकसद ढूंढ लेते हैं, खुशी कैसे पा लेते हैं, वो अंदरूनी मजबूती कहां से आती है।
बिल्कुल। और यही सवाल एक तरह से उनकी जीवन भर के काम का फोकस बन गया। उन्होंने शिकागो विश्वविद्यालय और फिर क्लेयरमोंट ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, और अपनी जिंदगी के करीब 40 साल, सोचिए 40 साल सिर्फ इसी एक चीज को समझने में लगा दिए कि इंसान अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ अनुभव यानी ऑप्टिमल एक्सपीरियंस कैसे हासिल करता है।
और इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही अनोखी रिसर्च टेक्निक भी इस्तेमाल की है ना, वो एक्सपीरियंस सैम्पलिंग मेथड।
हाँ, ESM, कमाल की टेक्निक थी वो। सोचिए, वो लोगों को दिन भर में अचानक कभी भी एक बीपर या पेजर से सिग्नल भेजते थे,
उस जमाने के हिसाब से।
हाँ, उस जमाने के हिसाब से। और पूछते थे, आप अभी क्या कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, आपका ध्यान कहाँ है। हजारों योगों से, अलग अलग कल्चर से सालों तक ये डेटा इकट्ठा किया उन्होंने, और इसी डेटा के आधार पर उन्होंने फ्लो के कॉन्सेप्ट को सिर्फ एक फिलोसॉफिकल आइडिया नहीं रहने दिया,
उसे एक वैज्ञानिक आधार दिया।
बिल्कुल, एक साइंटिफिक बेसिस दिया।
और शायद यही वैज्ञानिक आधार इस किताब को इतना भरोसेमंद और पावरफुल बनाता है। ये सिर्फ किसी की निजी राय या अंदाजे पर आधारित नहीं है। किताब का जो मूल तर्क है, जो सेंट्रल आइडिया है, वो ये है कि सच्ची टिकाऊ खुशी बाहर से नहीं आती। मतलब बाहरी हालात या आराम से नहीं, बल्कि हमारी अपनी चेतना, अपने मन को कंट्रोल करने की जो क्षमता है, उससे आती है।
हाँ, चिक्सेंटमिहाई यही कहते हैं कि हमारे जीवन के सबसे अच्छे पल, सबसे यादगार, सबसे संतोषजनक पल, जिन्हें वो ऑप्टिमल एक्सपीरियंस या फ्लो कहते हैं, वो तब आते हैं जब हम किसी एक्टिविटी में पूरी तरह से डूब जाते हैं।
पूरी तरह से।
हाँ, वो लिखते हैं कि इस अवस्था में समय जैसे पंख लगाकर उड़ जाता है,
पता ही नहीं चलता।
आत्मचेतना मतलब खुद के बारे में सोचना, वो गायब हो जाता है। और सबसे जरूरी बात, हमारी जो स्किल्स हैं, हमारी योग्यताएं, वो उस काम की चुनौती के एकदम बराबर होती हैं।
अच्छा, ये संतुलन बहुत जरूरी
है। बहुत जरूरी। ना तो काम इतना आसान कि बोरियत हो जाए, ना इतना मुश्किल कि घबराहट हो जाए।
राइट।
एकदम सही जगह पर।
और ये किताब उस पहेली को भी हल करने की कोशिश करती है कि भाई आज के समाज में इतनी सुविधाएं हैं, पैसा है, आराम है, फिर भी लोग ज्यादा खुश क्यों नहीं लगते।
हाँ, ये बड़ा सवाल है।
इसके लिए चिक्सेंटमिहाई एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, साइकिक एंट्रोपी। सुनने में थोड़ा टेक्निकल है, पर इसका मतलब क्या है?
हाँ, साइकिक एंट्रोपी, इसका मतलब है मन की वो नेचुरल टेंडेंसी, वो स्वाभाविक स्थिति, जब वो खाली होता है बिना किसी फोकस के, तो उसमें चिंता, बोरियत, एक तरह की बेचैनी, अव्यवस्था घर कर लेती है।
अच्छा।
जैसे मन भटकता रहता है। बिल्कुल, जैसे बिना लगाम का घोड़ा इधर उधर भागता रहता है।
तो इस साइकिक एंट्रोपी का इलाज क्या है?
इलाज है फ्लो। फ्लो यानी अपनी चेतना में, अपने ध्यान में एक्टिवली व्यवस्था लाना, अपने ध्यान को किसी सार्थक काम में लगाना। और यहीं पे किताब एक और बहुत जरूरी फर्क बताती है, प्लेजर यानी सुख और एंजॉयमेंट यानी आनंद, इन दोनों के बीच।
हाँ, ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। प्लेजर या सुख जो है वो अक्सर हमारी शारीरिक या बेसिक जरूरतें पूरी होने से मिलता है,
जैसे खाना, आराम।
हाँ, जैसे अच्छा खाना खा लिया, आराम कर लिया, ये जरूरी है। ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं है, पर ये टेम्पररी होता है, क्षणिक।
हाँ।
और इससे हमारा कोई पर्सनल ग्रोथ नहीं होता।
सही बात है।
दूसरी तरफ है एंजॉयमेंट या आनंद, ये तब मिलता है जब हम किसी चैलेंजिंग काम में मेहनत करते हैं, अपनी लिमिट्स को थोड़ा पुश करते हैं, कुछ नया सीखते हैं या कोई लक्ष्य हासिल करते हैं।
इसमें एफर्ट लगता है।
हाँ, इसमें कोशिश लगती है, पर यही हमें गहरी और लंबे समय तक चलने वाली संतुष्टि देता है। और फ्लो वो इसी आनंद का, इंजॉयमेंट का पीक एक्सपीरियंस है, सबसे ऊंचा रूप।
तो अगर शॉर्ट में कहें तो ये किताब हमें सिखाती है कि खुशी खरीदी नहीं जा सकती, उसे कमाना पड़ता है, अपने मन को साधकर, अपनी एनर्जी को सही दिशा देकर।
और ये किताब हर उस इंसान के लिए है जो मतलब सतही खुशियों से आगे बढ़कर जीवन में कुछ गहरा अर्थ, कोई सच्ची संतुष्टि ढूंढ रहा है।
चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं, किताब के कुछ खास आइडियाज और अध्यायों पर बात करते हैं।
शुरुआत होती है, जैसा हमने कहा, खुशी की जो पारंपरिक धारणाएं हैं उन पर सवाल उठाने से। पैसा, आराम, बाहरी सफलता, ये खुशी की गारंटी नहीं है।
बिल्कुल नहीं।
किताब कहती है कि खुशी इस पर कम निर्भर करती है कि हमारे साथ क्या होता है, और इस पर ज्यादा कि हम उसे इंटरप्रेट कैसे करते हैं, उसका अर्थ कैसे निकालते हैं।
हाँ, हमारा नजरिया।
बिल्कुल। और यहीं से चेतना के नियंत्रण का, कंट्रोल का आइडिया आता है कि हम अपने अनुभवों के मालिक कैसे बन सकते हैं।
और ये कंट्रोल आता कहाँ से है? ये आता है हमारे सबसे कीमती रिसोर्स, हमारे ध्यान यानी अटेंशन को मैनेज करने से। किताब का दूसरा अध्याय इसी पर फोकस करता है कि हमारी चेतना, हमारा कॉन्शियसनेस काम कैसे करता है। हमारा दिमाग एक बार में बहुत लिमिटेड जानकारी ही प्रोसेस कर सकता है ना।
हाँ, बैंडविड्थ लिमिटेड है।
इसलिए हम अपना ध्यान कहाँ लगाते हैं यही तय करता है कि हमारा अनुभव कैसा होगा। जब ध्यान बिखरा होता है, चिंता में, बोरियत में डूबा होता है, तो वो है साइकिक एंट्रोपी की स्थिति,
वो अंदरूनी बेचैनी।
हाँ, लेकिन जब हम अपने ध्यान को किसी एक लक्ष्य पर फोकस करते हैं, केंद्रित करते हैं, तो हम साइकिक निगेंट्रोपी यानी मानसिक व्यवस्था या फ्लो की तरफ बढ़ते हैं।
और जब ध्यान केंद्रित होता है तो सिर्फ सुख नहीं मिलता, बल्कि वो गहरा वाला आनंद मिलता है। अध्याय 3 इसी एंजॉयमेंट की प्रकृति और फ्लो की विशेषताओं पर बात करता है। चिक्समिहाई फ्लो के करीब 8 मुख्य विशेषताएं बताते हैं।
हाँ, कई हैं।
जैसे काम के लक्ष्य एकदम साफ होते हैं, पता होता है कि करना क्या है,
क्लैरिटी होती है।
हाँ, और हमें तुरंत फीडबैक मिलता है कि हम कैसा कर रहे हैं।
ये बहुत जरूरी है, इमीडिएट फीडबैक।
बिल्कुल। फिर वो चुनौती और हमारे कौशल के बीच सही संतुलन वाली बात, क्रिया और जागरूकता का एक हो जाना, मतलब हम जो कर रहे होते हैं बस वही होते हैं, उसी में खो जाते हैं।
हाँ, एक्शन और अवेयरनेस मर्ज हो जाते हैं।
हम खुद के बारे में सोचना भूल जाते हैं, समय का एहसास बदल जाता है, कभी लगता है बहुत तेज बीता, कभी बहुत धीमा, और सबसे अहम, अनुभव ऑटोटेलिक होता है।
ऑटोटेलिक, ये एक और महत्वपूर्ण शब्द है। इसका सीधा सा मतलब है कि उस गतिविधि को करने का जो इनाम है, जो रिवॉर्ड है, वो उस गतिविधि को करने में ही है।
अच्छा।
किसी बाहरी रिजल्ट के लिए नहीं,
किसी बाहरी परिणाम या फायदे के लिए नहीं। हम वो काम इसलिए करते हैं क्योंकि उसे करने में ही मजा आ रहा है। जैसे कोई बच्चा खेलते हुए सब कुछ भूल जाता है, उसे खेलने में ही मजा आ रहा है।
बिल्कुल, समझ गई।
और ये जो चुनौती और कौशल के संतुलन वाली बात है जो अध्याय 4 में है, ये फ्लो के लिए सबसे जरूरी शर्त है,
सबसे क्रिटिकल।
हाँ,
सोचिए अगर आप कोई नया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हैं।
हाँ।
अगर शुरुआत में ही बहुत मुश्किल धुन बजाने को दे दी जाए तो क्या होगा?
घबराहट होगी, एंग्जाइटी।
और अगर महीनों तक सिर्फ सारे गामा ही बजाना पड़े
तो बोरियत होगी, बॉडम।
बिल्कुल।
तो फ्लो की स्थिति तब बनती है जब चुनौती आपके कौशल से थोड़ी सी ज्यादा हो, इतनी कि आपको कोशिश करनी पड़े, लेकिन इतनी ज्यादा भी ना हो कि आप हताश हो जाएं। वो स्वीट स्पॉट।
हाँ, और किताब ये भी बताती है कि ये संतुलन कोई फिक्स्ड चीज नहीं है, ये डायनामिक है। जैसे जैसे हमारे स्किल्स बढ़ते हैं, हमें फ्लो में बने रहने के लिए और बड़ी चुनौतियां ढूंढनी पड़ती हैं।
अच्छा, ताकि बोरियत ना हो।
हाँ, और यही चीज हमें लगातार सीखने और ग्रो करने के लिए मोटिवेट करती है। यही है वो मशहूर फ्लो चैनल मॉडल, जहां हाई चैलेंज और हाई स्किल मिलते हैं वहीं फ्लो बहता है।
और ये फ्लो सिर्फ दिमागी कामों या आर्टिस्टिक कामों में ही नहीं मिलता है ना?
नहीं, बिल्कुल नहीं। अध्याय 5 और 6 बताते हैं कि फिजिकल एक्टिविटीज जैसे खेल खेलना, दौड़ना, डांस करना या तक कि तेज चलना, इनमें भी हम गहरे फ्लो का अनुभव कर सकते हैं।
हाँ, कई बार महसूस होता है
जी। और इसी तरह मेंटल एक्टिविटीज जैसे शतरंज खेलना, कोई मुश्किल पजल सॉल्व करना, कोई गहरी किताब पढ़ना या कुछ लिखना, ये भी फ्लो के जबरदस्त स्रोत हैं। तो फिजिकल फिटनेस और मेंटल डिसिप्लिन दोनों ही फ्लो पाने की हमारी क्षमता को बढ़ाते हैं।
और फिर आता है अध्याय 7, जो शायद कई लोगों को चौंका सकता है, काम इन फ्लो।
हाँ, ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगता है।
बिल्कुल, हमारी आम धारणा तो यही है कि काम मतलब मजबूरी, बोझ, और असली मजा तो छुट्टी में या खाली समय में है। लेकिन चिकसेंटमिहाई का शोध कुछ और ही कहता है। उन्होंने पाया कि लोग अक्सर अपने काम के दौरान ज्यादा फ्लो महसूस करते हैं।
हाँ, अपने खाली समय की तुलना में ज्यादा।
ये तो वाकई हैरान करने वाली बात है। ऐसा क्यों?
क्योंकि काम में अक्सर वो चीजें मौजूद होती हैं जो फ्लो के लिए जरूरी हैं, जैसे स्पष्ट लक्ष्य होते हैं, काम करने के नियम होते हैं, स्ट्रक्चर होता है।
हाँ, एक ढांचा होता है।
और हमें अक्सर तुरंत प्रतिक्रिया भी मिलती है कि हम कैसा कर रहे हैं, बॉस से, सहकर्मियों से या काम के नतीजों से।
खाली समय में अगर हम उसे एक्टिवली प्लान ना करें तो मन अक्सर भटक जाता है, साइकिक एंट्रोपी का शिकार हो जाता है, ऊब और बेचैनी।
अच्छा, और किताब ये भी बताती है कि हम किसी भी काम को, चाहे वो कितना भी बोरिंग क्यों न लगे, उसे ज्यादा दिलचस्प बना सकते हैं जॉब क्राफ्टिंग के जरिए। बिल्कुल, जॉब क्राफ्टिंग, ये बहुत ही पावरफुल आइडिया है। इसका मतलब है अपने काम को अपनी तरफ से थोड़ा बदलना, उसे अपने हिसाब से ढालना।
कैसे?
जैसे खुद के लिए छोटे चुनौतीपूर्ण लक्ष्य तय करना। मान लीजिए कोई रिपोर्ट बनानी है तो लक्ष्य रखा कि इसे पिछली बार से 10 मिनट जल्दी पूरा करूंगा।
अच्छा, एक छोटा सा चैलेंज।
हाँ, या अपने काम में नई चीजें आजमाना, नए स्किल सीखना, या अपने काम के मायने ढूंढना कि ये क्यों जरूरी है। किताब में तो फैक्ट्री के उन मजदूरों तक के उदाहरण हैं जिन्होंने अपने बहुत ही रेपिटेटिव काम में भी महारत हासिल करके और छोटे छोटे खेल ईजाद करके फ्लो ढूंढ लिया था।
वाओ, ये दिखाता है कि फ्लो बाहरी परिस्थिति से ज्यादा हमारी अप्रोच पर निर्भर करता है।
एग्जैक्टली, हमारी आंतरिक अप्रोच पर।
यानी हम अपने रोजमर्रा के काम को भी ज्यादा मीनिंगफुल बना सकते हैं।
और सिर्फ काम ही नहीं, किताब रिश्तों और अकेलेपन में भी फ्लो की बात करती है। अध्याय 8, जी हाँ, गहरी बातचीत, एक दूसरे पर पूरा ध्यान देना, साथ मिलकर कोई लक्ष्य साधना, ये सब रिश्तों में फ्लो ला सकता है।
और अकेले रहकर भी फ्लो संभव है?
हाँ, अगर हम अपने मन को व्यस्त और केंद्रित रख सके। कोई किताब पढ़ना, कुछ सीखना, अपने विचारों को लिखना, ये एक तरह की भावनात्मक आत्मनिर्भरता है।
और अंत में किताब सबसे मुश्किल सवाल पर आती है, अध्याय 9 और 10। क्या गंभीर तनाव, कोई बड़ी मुसीबत या मुश्किल हालात में भी फ्लो संभव है?
और जवाब है हाँ। यहीं पर ऑटोटेलिक पर्सनैलिटी का कॉन्सेप्ट आता है।
ऑटोटेलिक पर्सनैलिटी?
हाँ, मतलब वो इंसान जो बाहरी परिस्थितियों की दया पर नहीं जीता, जो अपने अंदर से ही खुशी, उद्देश्य और चुनौती ढूंढ लेता है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। किताब में जेल में बंद कैदियों के, गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों के उदाहरण हैं जिन्होंने अपनी मुश्किल परिस्थितियों को एक चुनौती की तरह लिया और उनमें भी फ्लो और अर्थ खोजा।
ये तो बहुत प्रेरणादायक है
जी। ये फ्लो अनुभव न सिर्फ हमें मुश्किल समय से निकलने में मदद करते हैं, बल्कि धीरे धीरे हमारे जीवन में एक गहरे अर्थ और उद्देश्य का निर्माण करते हैं।
तो अगर हम इन सभी बातों का सार निकालें तो कुछ मुख्य संदेश, कुछ की टेक अवेज उभर कर आते हैं। पहला और शायद सबसे बड़ा संदेश है चेतना की प्रधानता। हमारी जिंदगी की क्वालिटी इस पर निर्भर नहीं करती कि हमारे पास क्या है या हमारे साथ क्या हो रहा है,
बल्कि इस पर कि हम अपने अंदरूनी अनुभव को, अपनी चेतना को कैसे संभालते हैं।
बिल्कुल, खुशी एक बाहरी खोज नहीं, एक अंदरूनी स्किल है।
दूसरा महत्वपूर्ण संदेश है सुख, प्लेजर बनाम आनंद, एंजॉयमेंट का फर्क। निष्क्रिय आरामदायक सुख क्षणिक है, असली और टिकाऊ संतुष्टि एक्टिव आनंद से मिलती है जिसमें हम एफर्ट डालते हैं, चुनौती स्वीकार करते हैं और कुछ सीखते या बनाते हैं।
हाँ, मतलब जिंदगी में सिर्फ आराम नहीं बल्कि सार्थक चुनौतियां ढूंढनी चाहिए, चाहे वो पढ़ाई हो, काम हो या कोई शौक।
सही।
तीसरा है ऑटोटेलिक अनुभव की अहमियत, मतलब ऐसे काम करना जिन्हें करने में ही मजा आए, किसी बाहरी इनाम के लिए नहीं। वो आंतरिक प्रेरणा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन।
हाँ, जैसे भारत में कितनी पारंपरिक कलाएं हैं, संगीत है, हस्तशिल्प हैं।
हाँ, जिन्हें लोग पीढ़ियों से सिर्फ करने के आनंद के लिए करते आए हैं, वो फ्लो का एक बेहतरीन उदाहरण है।
चौथा, चुनौती कौशल संतुलन। ये सिर्फ फ्लो पाने का तरीका नहीं है, ये हमारे पर्सनल ग्रोथ का इंजन है। अगर हमेशा आसान काम ही करते रहेंगे तो हम वहीं रह जाएंगे। लगातार सीखते रहना, स्किल्स बढ़ाना और थोड़ी मुश्किल चुनौतियों का सामना करना, यही हमें जिंदा दिल और विकसित बनाता है।
और पांचवा, जो मुझे सबसे ज्यादा सशक्त लगता है, वो है साधारण को सर्वोत्तम बनाना। फ्लो कोई खास लोगों या खास एक्टिविटीज के लिए रिजर्व नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
ये हर किसी के लिए हर रोज के काम में, चाहे वो कितना भी मामूली क्यों ना लगे, संभव है। एक सफाई कर्मचारी अपने काम में उतनी ही उत्कृष्टता और फ्लो पा सकता है जितना एक सर्जन। ये फ्लो को बहुत डेमोक्रेटिक बनाता है।
सही कहा, बस जरूरत है अपने ध्यान को साधने की। ध्यान ही हमारा सबसे बड़ा खजाना है।
किताब में कई ऐसी पंक्तियां हैं जो इन गहरे विचारों को बड़ी खूबसूरती से सामने रखती हैं। एक जो मुझे हमेशा याद रहती है,
हमारे जीवन के सबसे अच्छे पल निष्क्रिय, ग्रहणशील, आराम वाले समय नहीं होते। सबसे अच्छे पल तब आते हैं जब किसी व्यक्ति का शरीर या मन किसी कठिन और सार्थक चीज को पूरा करने के स्वैच्छिक प्रयास में अपनी सीमा तक खिंच जाता है।
हाँ, ये निष्क्रियता के खिलाफ एक मजबूत तर्क है। असली मजा आराम फरमाने में नहीं, बल्कि खुद को चैलेंज करने में, अपनी क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल करने में।
बिल्कुल, ये हमारी आराम ही सब कुछ है वाली सोच को सीधी चुनौती है। एक और बेहद फंडामेंटल और शक्तिशाली विचार, चेतना का नियंत्रण जीवन की गुणवत्ता निर्धारित करता है।
ये सचमुच पूरी किताब की नींव है। सब कुछ इसी पर टिका है। बाहरी दुनिया कैसी भी हो, अगर हम अपने मन पर, अपने ध्यान पर काबू रखना सीख लें, तो हम अपने अनुभव की क्वालिटी को बदल सकते हैं।
हम बाहरी परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहते।
और फ्लो की वो परिभाषा भी बहुत खूबसूरत है। फ्लो किसी गतिविधि में पूरी तरह से उसी के लिए शामिल होना है। अहंकार गायब हो जाता है, समय उड़ जाता है, हर क्रिया, चाल और विचार अनिवार्य रूप से पिछले वाले से निकलता है, जैसे जैज बजाना।
जैसे जैज बजाना, क्या कमाल की उपमाएं। यो उस तल्लीनता, उस सहज प्रवाह और उस क्षण में पूरी तरह खो जाने की स्थिति को दर्शाता है।
इसमें अनुशासन भी है और आजादी भी, कौशल भी है और क्रिएटिविटी भी। ये बताता है कि फ्लो कितना ऑर्गेनिक और जीवंत अनुभव है।
तो अब सबसे अहम सवाल, हम इन सभी विचारों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारें कैसे? ये सिर्फ किताबी बातें ना रह जाएं।
हाँ, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? एक तरीका तो है अपने शौकों और निजी जीवन में। घंटों तक पैसिवली टीवी देखने या सोशल मीडिया स्क्रॉल करने के बजाय, क्यों ना ऐसे शौक चुने जिनमें चैलेंज और स्किल का बैलेंस हो।
हाँ, जैसे
कोई नई भाषा सीखना, पेंटिंग करना, गिटार बजाना सीखना, बागवानी करना या कोई मुश्किल रेसिपी ट्राई करना। छोटे लक्ष्य बनाएं, प्रोसेस को एंजॉय करें।
सही बात है, और काम की जगह पर भी इसे लागू किया जा सकता है। जैसे हमने जॉब क्राफ्टिंग की बात की, अपने काम में छोटे छोटे लक्ष्य तय करें, अपने काम को बेहतर करने के तरीके खोजें, नए स्किल्स सीखें।
और अगर कोई मैनेजर है,
अगर आप मैनेजर हैं तो अपनी टीम के लिए ऐसी स्थितियां बनाएं जहां उन्हें उनकी क्षमता के अनुसार चुनौती मिले, क्लियर फीडबैक मिले और थोड़ी आजादी हो। इससे न सिर्फ काम ज्यादा मजेदार होगा बल्कि प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी।
और सीखने सिखाने में भी ये बहुत उपयोगी हो सकता है। टीचर्स को चाहिए कि वे स्टूडेंट्स को ऐसा काम दें जो न बहुत आसान हो न बहुत मुश्किल। उन्हें तुरंत और साफ फीडबैक दें।
सीखने को एक खेल या पहेली जैसा बनाएं।
हाँ, ताकि बच्चे रटने के बजाय सीखने की प्रक्रिया का आनंद ले पाएं, फ्लो में सीखें।
हाँ, और रिश्तों में भी, अपने प्रियजनों के साथ बात करते समय या समय बिताते समय पूरा ध्यान उन पर लगाएं, डिस्ट्रैक्शन हटा दें।
हाँ, फोन साइड में रख दें।
बिल्कुल, साझा गतिविधियों में शामिल हों। मुश्किल समय में भी स्थिति को एक चुनौती की तरह देखें, छोटे कदम उठाएं और जो आपके कंट्रोल में है उस पर फोकस करें। ये फ्लो के सिद्धांत हमें ज्यादा रेजिलियंस, ज्यादा मजबूत बनाते हैं।
तो इस पूरी चर्चा से मेरे लिए जो सबसे बड़ा टेक अवे है, वो ये है कि खुशी कहीं बाहर रखी हुई चीज नहीं है जिसे हमें ढूंढना है। ये एक अंदरूनी अवस्था है, एक स्किल है जिसे हम प्रैक्टिस से डेवलप कर सकते हैं।
मैं सहमत हूँ, और ये विचार बहुत सशक्तिकरण देता है, एम्पावरिंग है। हम बाहरी परिस्थितियों के रहमो करम पर नहीं हैं। हम अपने अनुभवों के एक तरह से आर्किटेक्ट बन सकते हैं। अपने मन को साधकर, अपने ध्यान को सही दिशा देकर हम किसी भी परिस्थिति में संतुष्टि और अर्थ खोज सकते हैं।
और फ्लो सिर्फ अच्छा महसूस करने के बारे में नहीं है, ये हमें लगातार बेहतर इंसान बनाता है। हर बार जब हम फ्लो में होते हैं, हम कुछ नया सीखते हैं, हमारा कौशल बढ़ता है, हम एक अधिक कॉम्प्लेक्स, एक अधिक सक्षम व्यक्ति बनते हैं।
जी हाँ, और ये अनुभव हमारे जीवन को परत दर परत अर्थ देते हैं, एक गहरा मीनिंग।
तो श्रोताओं के लिए एक छोटा सा प्रयोग छोड़ जाते हैं।
हाँ बिल्कुल, अगले 24 घंटों में जानबूझकर अपनी जिंदगी के किसी एक काम में, चाहे वो ऑफिस का काम हो, घर का काम हो, कोई शौक हो या किसी से बातचीत, पूरी तरह डूबने की कोशिश करें।
चैलेंज और स्किल का वो बैलेंस साधें।
हाँ, ध्यान केंद्रित करें और देखें क्या फ्लो की एक झलक पाते हैं, वो अनुभव कैसा होता है, बस महसूस करें।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।